الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عليما قديرا مدبرا دينا بصيرا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا وزيرا. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى كافه ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وقال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیو اور عزیز بہنوں، یہ تصوف اور احسان کی مجلس ہے. اس میں تصوف سے متعلق بات بیان کی جاتی ہے، لیکن اس حقیقت کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ تصوف یہ باتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ در حقیقت شریعت مطہرہ پر عمل پیرائی کا نام ہے. بس یوں سمجھیں کہ علم مال عمل، اگر علم کے ساتھ عمل وابستہ ہو جائے تو اسی کو طریقت کہتے ہیں، اور اسی طریقت میں جب نکھار پیدا ہوتا ہے تو اس کو حقیقت سے تعمیر کرتے ہیں. اس میں اللہ جل جلالہ کی صفات جلال اور جمال جب آدمی سمجھنا شروع کرتا ہے تو اس کو معرفت کہا جاتا ہے. بات کبھی کبھی گہری ہو جاتی ہے، لیکن سیدھے سادھے پیرائے میں آپ حضرات سے کچھ باتیں کرنے کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلوک ہے کیا چیز. سلوک ہمارے پاس نام ہے اپنے ظاہر اور اپنے باطن کی تعمیر کا. ظاہر کو شریعت مطہرہ کے اعتبار سے اپنے اعضا کو استعمال کر کے آباد کرنا، اور اپنے باطن کو، اپنے دل کو اور اپنے روح کو صفات حسنہ سے آراستہ کر کے معمور کرنا. تعمیر کا مطلب اصلاح، اصلاح ظاہر و باطن کو. طریقت بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہتے ہیں، اور معرفت کا راستہ بھی کہتے ہیں، خدا کی پہچان کا راستہ بھی کہتے ہیں، بہت سارے ناموں سے اس کو یاد کرتے ہیں. یہ آخر یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تصوف اور طریقت کہاں سے نکلا، یہ چیز کدھر سے آئی؟ کیا یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی؟ یقیناً تھی، لیکن اس وقت یہ نام نہیں دیا گیا تھا. تصوف کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 200 برس کے بعد پیدا ہوا. یہ لفظ اصل شروع ہی سے موجود ہے. لفظ کا استعمال 2 صدی کے قریب قریب 180 برس کے بعد استعمال ہوا. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وقت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت اور طریقت دونوں الگ الگ چیزیں نہیں تشمار کی جاتی تھیں، بلکہ ایک ساتھ تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جامعیت کی ہستی تھی. سرکار بہت جامع تھے شریعت اور طریقت کے، حقیقت اور معرفت کے. ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، وہ صحابہ کرام کو بھی جو فیضان ملا تھا وہ یکساں تھا، یعنی ظاہر اور باطن دونوں کا ایک ساتھ تھا. جیسے علم کہنے کے بعد آپ بہت سارے شعبے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، ये साइंस है और ये जोग्राफिया है और ये तारीख है और ये फलसफा है और जो ये मंतिक है और ये फुलां है और फुलां है और लू है ना। इल्म का नाम लेने के बाद सारी चीजें एक साथ जहन में आती हैं। या जैसे डॉक्टर कहने के बाद बहुत से अमराज और बहुत से अमराज का इलाज एक ही शख्स की तरफ समझ में आता है कि भाई कोई आदमी बीमार हो गया तो कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब के पास चले जाइए। जब डॉक्टर साहब के पास जाएगा तो उन हर कसो नाकस को हर लिहाज से और हर मर्ज की नौयत को सामने रखकर उसका इलाज करता है। लेकिन जब उसके अंदर वुसअत पैदा हुई, तवस्सु हुआ और उसके अंदर फैलाव हुआ काम के अंदर, तो एक खास बात आज के दौर में भी पैदा हुई जिसको आप जानते हैं, यानी हर फन जो है अपनी अलहदा अलहदा खसूसियत के साथ मुमताज हुआ। जैसे देखिए इस वक्त जो है आंखों का डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, हड्डियों का डॉक्टर होता है, खसूसी होता है, और दीगर हमारा कोई दांतों का डॉक्टर कहलाता है, कोई हलक का डॉक्टर कहलाता है और कोई ब्रेन और दिमाग का डॉक्टर कहलाता है और कोई मुख्तलिफ अंदाज से जैसे जितने आजा और जवाले के एतबार हैं या डॉक्टर की जो तकसीम होती है, तो आप हर फन के एतबार से अलहदा 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 डॉक्टर का आप नाम लेते हैं कि भाई फलां स्पेशलिस्ट है उसको बदलाओ। देखिए ऐसे मौके पर अगर कोई आदमी ये कहे कि क्यों भाई इनको आंख का डॉक्टर क्यों कहते हैं, क्या ये दूसरे अमराज का इलाज नहीं कर सकते, तो आप क्या कहेंगे कि दूसरे अमराज को भी देखता है लेकिन खास तौर से आंखों को देखने के बारे में बड़ा माहिर, तो मशहूर हो जाता है आंखों के डॉक्टर, देखता है पूरे मर्जों को लेकिन मशहूर होता है आंख के डॉक्टर। हड्डियों का जो डॉक्टर होता है खास तौर से मशहूर तो हो जाता है वो डॉक्टर के नाम से, लेकिन वो इस बात से भी मुनासिबत रहता है कि पूरे जिस्म के अंदर आने वाले हवारिस के बारे में जरूर किसी न किसी दर्जे का वो इलाज बतला देता है। तो बावजूद इस बात के कि उन कुल्ली तौर पर डॉक्टर है लेकिन खास तौर से उसको फुला फुला दर्जे फुला फुला मर्ज के अंदर उसको स्पेशलिस्ट माना जाता है, तो इसकी वजह से तंगी नहीं कहते इसको बल्कि इसको और वुसअत कहते हैं। यह फन की तंगी नहीं है। अरे क्या बोलना, बोले खाली आंख ही देखता, बोले क्या बेवकूफ डॉक्टर है, क्या कभी ऐसा बोलेगा कोई, कैसा नादान आदमी है, बोले खाली हड्डियों का इलाज करता है। तो ये इल्म और फन की तंगी नहीं है, ये तो इल्म और फन की वुसअत है, उसका फैलाव है और उसी फैलाव की बुनियाद पर यह तकसीमें कार हुई। जब इल्म के अंदर वुसअत पैदा हुई तो इसी वास्ते मुहद्दिसीन का ग्रुप पैदा हुआ, मुहद्दिस पैदा हुए, मुफस्सिर पैदा हुए, फलसफी पैदा हुए, मुहक्किक पैदा हुए है ना, और जो मुतकल्लिम पैदा हुए, फलासफर पैदा हुए, हुकमा पैदा हुए। तो क्या मतलब, क्या उनको इल्म नहीं था? दूसरा मतलब यह है कि जिस तरीके से तकसीम हुई इल्म की, इसी तरीके से जो अफराद जिस्म के तकाजों की मुफीद तकमील के साथ साथ रूह के तकाजों को मलहूज नजर उन्होंने रखा और खुसूसियत से अपने इस्लाम की तरफ उन्होंने तवज्जो दी, अपने बातिन को उन्होंने संवारा, अपनी सिफात को सही ढंग पर इस्तेमाल करना उन्होंने जानने की कोशिश की और तरीकत से काम लिया, राह सुलूक चलते रहे, अपने किसी को अपना रहबर माना और सारे दरअसल रहबर वाबस्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। इसीलिए ये तकसीम अमल में आई कि लगभग दो सदी के बाद वो हजरात जो खास तौर पर अपने बातिन की इस्लाह में मसरूफ हुए उनको सूफी कहा गया, आरिफीन कहा गया, सूफिया कहा गया, वरना पहले दौर के अंदर सहाबी से बढ़कर कोई लफ्ज नहीं था, उससे ऊंचा कोई लफ्ज नहीं था, सहाबी ही सब कुछ था इल्म और अमल के एतबार, और सहाबी किराम किसी यूनिवर्सिटी के फारिग नहीं थे, किसी कॉलेज के पढ़े लिखे नहीं थे, पूरे सरजमीन अरब पर उस जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
चर्चा हो रहा था तो पूरे सरजमीन अरब पर तीन या चार या दो या ज्यादा से ज्यादा पांच या छह की तादाद वो है जिनके बारे में ये मशहूर था कि पढ़े लिखे हैं पूरे अरब में। सहाबा किसी यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं थे, किसी कॉलेज में पढ़े हुए नहीं थे, और फिर जिसको उन्होंने अपना मुअल्लिम माना था वो खुद भी किसी यूनिवर्सिटी का फारिग नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मदरसे के फारिग हैं क्या? वो तो हजरत रहमान के शागिर्द हैं, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के शागिर्द हैं। कभी अल्लाह ताला वास्ता बनाते थे हजरत जिब्राइल अलैहि सलातु वसलाम को। इसी वास्ते सरकार जी, चूंकि आप पढ़े लिखे न थे इसलिए सरकार को उम्मी लखब कहा गया, उम्मी है सरकार। मगर कैसे उम्मी थे? ऐसे थे आप उम्मी लखबी खोली जुबान जिस दम भर में बे जुबान थे सारे जुबान वाले, ऐसे उम्मी थे सरकार जी। गूंगे बड़े तो ऐसे गूंगे नहीं कि बात ही नहीं कर सकते जी, नहीं ऐसे थे आप उम्मी लखबी खोली जुबान जिस दम भर में बे जुबान थे सारे जुबान वाले, ऐसे उम्मीद थे सरकार। अब उन उम्मीद सरकार से मिलने वाले इल्म सहाबों को जो मिला वो मदरसे और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की निस्बतों पर नहीं बल्कि सोहबत से मिला, और लफ्ज सहाबी ही सोहबत से बना है। और इस दौर में लोग पूछते हैं कि सोहबत जरूरी है क्या? अरे बुनियाद ही वो है इस्लाम के अंदर, सोहबत की बुनियाद पर तो सहाबी बने। यह अलग बात है कि क़ियामत तक के कोई आदमी सहाबी नहीं बन सकता, सहाबी तो सिर्फ वो शख्स बना और वो अफराद सहाबा कहलाए जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और उसी ईमान ही की हालत पर उनकी वफात हुई हो तो उनको कहा जाता है सहाबी, जिसकी जमा सहाबा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सहाबा को जो इल्म मिला वो सोहबत की बुनियाद पर मिला, हुजूर ने जो काम किया सहाबा ने जो काम किया वो काम जरूरी है या गैर जरूरी है? जाहिर बात है कि इसके जी गैर जरूरी होने का क्या मतलब है, जरूरी है लाहूदी है जिसके सिवाय चारा नहीं। वालिद मानिद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे, अजीब बात है आपको जो है मेमारी का काम करना है तो मेमार की सोहबत चाहिए, लोहारी का काम करना है तो लोहार से निस्बत चाहिए, लोहार से आपका आपको वाबस्तगी चाहिए, आप सोने का काम करना चाहते हैं तो आप सुनार की सोहबत दरकार है ना। दुनिया के अंदर जो काम या आप बढ़े का कोई काम करना चाहते हैं तो बढ़े की सोहबत दरकार है। दुनिया के सारे काम सोहबत के जरिए से मुयस्सर आते हैं। तो एक ऐसा अजीब बात है कि फिर अल्लाह ताला क्या अल्लाह वालों की सोहबत से नहीं मिलेगा? जब सारी चीजें दुनिया की सोहबत की बुनियाद पर वाबस्त है तो फिर अल्लाह को लेने के लिए अल्लाह वालों का होना जरूरी है और अल्लाह वालों से वाबस्तगी जरूरी है। भाई अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात क्या मतलब, क्या कुरान से हटी हुई है? और अगर हटी हुई है तो वो कादरी तालीमात क्यों कहलाए? हमको वैसी तालीमात की तो हाजत रही है ना। तो सहाबी का लफ चूंकि सबसे ज्यादा ऊंचा था, सबसे ज्यादा जामे था, सबसे ज्यादा अफजल था और सबसे ज्यादा काबिल था, इसी वास्ते उस दौर के अंदर सहाबी से बढ़कर कोई और शरफ नहीं था, इसलिए पूरे सहाबा ने अपने लिए उसी नाम को पसंद फरमाया और सरकार ने उनको सहाबा कहा। और अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़का मतलब यह है कि जो सहाबी है वो सहाबी है, अब वो चाहे कम दर्जे का रहे या ज्यादा दर्जे का, मगर अदना से अदना दर्जे के भी जो सहाबी हो सकते हैं उनके जी उनके मर्तबे को कोई बड़े से बड़ा गौस और वली और कुतुब और वतक और बदल और मुखय्यर नहीं पहुंच सकता। ये तयशुदा मसला है, मुत्तफ़का मसला है, ये किसी का इख्तलाफ नहीं है उलमा का। अब चूंकि सहाबा के बाद कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जाना था कि सहाबा के बाद वाले अफराद जिन्होंने हुजूर को नहीं देखा उनको तो सहाबी नहीं कह सकते थे, इसलिए कि ईमान की हालत पर हुजूर को देखना सहाबियत का दर्जा दिलाता है वरना सहाबियत का दर्जा नहीं दिलाता। ईमान की हालत पर हम बार बार इस वास्ते कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने हुजूर को जाहिरी नजरों से देखा मगर बेईमानी की हालत पर देखा, क्यों? अबू जहल ने नहीं देखा, अबू लहब ने नहीं देखा, मक्के के मुशरिकीन ने नहीं देखा, मक्के और मदीने के यहूदियों ने नहीं देखा, देखे लेकिन बेईमानी की हालत पर देखे, इसीलिए सहाबी नहीं बन सके। ईमान की हालत पर देखना सहाबियत के मर्तबे पर लाता है। और फिर खास तौर पर यह जुमला इस्तेमाल करना चाहिए कि फिर ईमान ही की हालत पर वफात भी हुई हो तो वो सहाबी, और अगर ईमान की हालत पर वफात नहीं हुई हो, बेईमानी पर हुई हो खुदा न खास्ता, तो उनको मुर्तद कहा जाता है। ईमान की हालत पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखने वाले और ईमान ही की हालत पर वफात पाने वाले इंसान सहाबा कहलाए। उसके बाद चूंकि उस दर्जे को तो पहुंचने वाले कोई और न थे, इसलिए अब उनकी पैरवी करने वालों को ताबेईन कहा गया। ताबे माने पीछे चलने वाला, नक्शे कदम पर चलने वाला जी, ताबईयत रखने वाला, इत्तिबा करने वाला जी, ताबईन कहा गया। बस सहाबा की ताबईयत जी, सहाबा के पीछे चलना, इससे बड़ी कोई और सआदत नहीं थी। इसीलिए उसके बाद वाले औलिया को, उलमा को, फुकहा को, मुहक्किकीन को ताबईन, ताबईन किराम कह दिया गया। जैसे सहाबा किराम कहते ऐसे ताबईन कहा गया। अब उसके बाद वाला जो ग्रुप आया, बाद वाला जो बाद वाली जो नस्ल आई, उनके लिए तबे ताबईन का इस्तेमाल किया गया। तबे ताबईन आप लोग सुनते होंगे, सहाबा ताबईन तबे ताबईन, यानी उन ताबईन की पैरवी करने वालों को तबे ताबईन कहा गया। अब उसके बाद ऐसे अल्फाज की जरूरत थी जो ज्यादा गंभीर और गुंजलक न हो और पेचीदा न हो, कहने के एतबार से भी सहल हो, तो अवामुन्नास के अंदर चूंकि कुछ गलत इल्म और फहम भी का चर्चा भी चल रहा था और इस्लाम के पर चलने वाले लोगों में कुछ झोल पैदा हो रहे थे, तो जो लोग सही रुख पर चल रहे थे उनके जिम्मेदारों और मुहक्किकीन हजरात ने उनके हक में उरफा और सूफिया का नाम दिया, और वो सूफिया का लफ्ज आज तक चलता आ रहा है, उसी को सूफी और आरिफ कहा जाता है। इसके है क्या, यानी इल्म सही और अमल सही अपने तमाम और कमाल के मर्तबे के साथ मिले, उसको आरिफ और सूफी कहा जाता है। तो ये तो वो बात थी कि जिसके अंदर हमको ये बात मालूम करना चाहिए था कि आखिर ये तसव्वुफ क्या चीज है और इस सुलूक के अंदर होता क्या है और इस सुलूक का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या ये लफ्ज अहादीस में भी कोई खास तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हाँ, बताया गया कि हदीस में इसको एहसान कहा गया, एहसान जिसकी तारीफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाई कि एहसान ये है कि एहसान यानी तसव्वुफ, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसी करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और तुमसे ये न हो सके और तुम न देख सको, जैसा कि होता है कि इन आंखों से अल्लाह को नहीं देखा जा सकता, तो कम से कम ये शुऊर रखो कि अल्लाह तुमको देख रहे हैं। इसको हदीस के लफ्जों में यूं कहा गया, वअबुदिल्लाह कअन्नक तरा फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, अल्लाह की इबादत ऐसी करो बोले अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो कि यूं समझो कि वो तुमको देख रहा है। ये तो आसान है ना, मैं उसको देखूं ये तो मुश्किल है, वो मुझको देख रहा है ये क्या मुश्किल है, ये तो आसान है ना। हाँ, अगर आपको कुछ उलझन न हो तो आप सोच लीजिए, अगर मैं उसको देख रहा हूं, अगर ये तवज्जो है तो इसी को सूफियों के पास, बुजुर्गान दीन के पास, औलिया अल्लाह के पास मुशाहदा कहते हैं। बहुत बड़ा बना के रखे ना लफ्जों को। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने, कलासिल के बुजुर्गों ने, रूहानियत और तरीकत के ताजदारों ने बहुत आसान कर दिया मसाइल को, वरना इन मसाइल को सोचने समझने और ये हमारी घुटियों में पढ़ने के लिए तो बरसा बरस के मुजाहदा और बड़ी रियाजतें और मशक्कतें दरकार हैं। लेकिन अल्लाह ताला उन अरवाह मुबारका कब्रों को नूर से भर दे कि जो जी कब्रों में चले गए और अल्लाह ताला के यहाँ इनाम पा रहे होंगे। आसान कर दिया मसाइल, तो अगर ये समझ रहे हैं कि हम अल्लाह गोया अल्लाह को देख रहे हैं, देख रहे हैं का तो दावा फजूल है, हम अल्लाह को देखते हैं। अगर कोई ये दावा करता है तो उसका वो दावा बातिल है। अगर वो कह रहा है नहीं देखे जैसा करता हूं ये बात सही है, गोया के देख रहे, गोया के देखना क्या है, क्योंकि वो दिल की नजर है, और दिल की नजर कैसी होती है, जैसे आपकी नजर होती है। कोई भाई और कोई बहन है यहां पर, मिसाल के तौर पर कोई बहन हैदराबाद से आ गई, कोई गढ़वाल से आ गई, कोई और ताल्लुके से, कोई जिले से, कोई शहर से आ गए, अचानक निकल आई जी अब वो बहन जो यहाँ पर आई है उसका घर हैदराबाद में या गढ़वाल में, उस बहन का मकान एक खास महल्ले में, उस महल्ले के अंदर एक मकान, मकान के अंदर दीवान खाना, दीवान खाने में और एक कोने में कमरा, उस कमरे के अंदर एक अलमारी, अलमारी में जी एक जो है एक केस, उसके अंदर एक डब्बी, डब्बी में फिर और एक डब्बी, उसमें रहता है चांदी का या सोने का छल्ला। मगर वो भाई या वो बहन यहां बैठ के बराबर उसको देखता है, नहीं नहीं देखती वो बहन, नहीं देखती वो छल्ला, बोले कौन सा, तो वही कैसा पहचाने भाई तू, तो मैं नहीं पहचानती मेरे छल्ले, अरे वो तो 100 किलोमीटर दूर है ना, कुछ नहीं होता 100 किलोमीटर से, अगर जिद्दे में भी है छल्ला तो बराबर देखूंगी, रियाल में है तो भी देखूंगी, इराक में है तो भी देखूंगी, कैसा देख रहे हैं भैया, इसको कहते हैं दिल की नजर। जैसे यहां बैठकर हम अपने अपने कमरे की अलमारियों में पानदान, पानदानों के अंदर डिबिया, डिबिया के अंदर छल्ले को देखते हैं, इसी तरीके से जिस इंसान और मुसलमान की नजर बातिनी एतबार से अल्लाह पर होती है वो असली सूफी है, बाकी सब नकली सूफी है, उसको सूफी कहते हैं, आरिफ भी कहा जाता है, पहचान वाला भी कहते हैं। जब आप यहां से सैकड़ों लाखों करोड़ों मील दूर, लाखों मील दूर पर अपने सोने चांदी के छल्ले को दीवारों के पर्दे हटाकर, पहाड़ों के पर्दे हटाकर, झाड़ों के पर्दे हटाकर, ये इमारतों के पर्दे हटाकर, गांवों के पर्दे हटाकर देख लेते हैं, तो क्या एक अल्लाह वाला इस बात पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकता कि वो अपने दिल के यकीन ये बनाए कि मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं। इसलिए सहाबा की जो दौलत ताबेईन को मिली, ताबेईन की जो दौलत उनके पास वाली तबे ताबेईन को मिली, और तबे ताबेईन की जो दौलत सूफिया इकराम को मिली, वही वही वास्ते चार सलासिल के अंदर फैल के रह गए। एक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, दूसरे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह, और तीसरे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, और चौथे शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी रहमतुल्लाहि अलैह। औलिया तो बहुत से गुजरे, मगर जैसे जाहिर में चार इमाम मशहूर हो गए, ऐसे ही रूहानियत में चार इमाम मशहूर हो गए, इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह जैसे मशहूर हो गए। अल्लाह ताला ने इसी तरह रूहानियत के इन चार ताजदारों को दुनिया के अंदर मारूफ और मशहूर कर दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि रूहानियत के कुछ और ताजदार नहीं थे या विलायत के रास्ते पर चलने वाले नहीं थे, या ये चार इमाम के अलावा कोई और इमाम और तफक्कुह रखने वाला, सूझबूझ रखने वाला, मसाइल का इस्तेमाल करने वाला नहीं था, बात ऐसी नहीं थी। अल्लाह ने अपनी कुदरत से, अपनी मशीयत से, अपनी हिकमत से, जैसे अबू हनीफा, शाफई, मालिक और अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये मारूफ और मशहूर बना दिया, इसी तरीके से पूरी दुनिया में बातिन के ताजदारों की हैसियत से इन चार अफराद को अल्लाह ने मुंतखब किया, मशहूर हो गए। यहां जो आप तालीमा सीखते हैं वही तालीमा है। 16 वास्तों से हजरत अब्दुल कादिर, 14 और 15 वास्तों से हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीम आप सुन रहे हैं वही तालीम है। ये कोई जिद्दत पसंदी या बिदअतें या कोई ऐसी अनहोनी या अनोखी या ऐसी परेशान कुन परेशान ख्याली की कुछ बातें या कुछ जो है कुछ लोगों का ग्रुप बना के करना, ये वो इस तरह की चीजें नहीं है। ये तो वही अमल है जो बवसाइत शर्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मिला, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ आया वो परवरदिगार आलम की हुजूरी से मिला, और वही इल्म और अमल हमारे पास मौजूद है। ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल और करम है। हमारे ये सिलसिला 33 वास्तों से और दूसरा 40 वास्तों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर मिल जाता है, ये कितना बड़ा करम है परवरदिगार का। वास्ते का क्या मतलब, मतलब मौलाना दर मददुल्लहु ने वालिद माली रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिफादा किया, हमारे साहब ने हजरत मौलाना जी मोहम्मद हुसैन साहब नाज़िम अदालत संस्थान वनप्रति से फायदा उठाया, उन्होंने इस्तिफादा किया हजरत शाह कमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से, उन्होंने इस्तिफादा किया हजरत महमूदुल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से। बस ये 39 वास्तों के बाद सरकार ही का नाम है, ये करम नहीं है परवरदिगार का, जितना भी शुक्र अदा करें कम। और अजीब बात यह है कि बस वो जी उंगली कटा के शहीदों में नाम, बस चुप जो है, हम जैसे तो बिल्कुल नाकारा और आवारा इस बात के अहल ही नहीं, मुस्तहिक ही नहीं कि यहाँ पर बैठकर आपको तसव्वुफ और तरीकत की तालीम दें, लेकिन ये मजलिसें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी फ़ज़्ल और करम हुआ और अल्लाह पाक ने ये मजलिसें चला दी और उसी के करम से आप हज़रात की खिदमत में मुख्तलिफ मजलिसें और उसमें अल्लाह की पहचान की बातें होती हैं। अब अगर आपको इन तमाम चीजों के समझने में कुछ मजीद दिक्कतें और दुश्वारियां हो रही हैं तो ये बात को अपनी जगह पर यहीं पर रखिए। अब कम से कम खुलासे के तौर पर यह समझ लें कि यह सिलसिला है अल्लाह को पहचानने का, ये तो मुश्किल नहीं है अल्लाह को पहचानना। बोले अल्लाह को पहचानते हो साहब? कैसा पहचानते? हाँ भाई, इस बात से कि मेहनत नहीं हुई ना, हमने चूंकि पैसे पर मेहनत की लिहाजा पैसे को पहचाना, कपड़े पर मेहनत की तो कपड़े को पहचाना, जब रिकॉर्डर पर मेहनत की तो हमने उसको पहचाना लड़की, और हमने गिलास पर मेहनत की तो हमने गिलास को पहचाना, दीवारों पर मेहनत की और ईंट और गारे पर मेहनत की तो इनको पहचाना, लेकिन चूंकि हमने मारिफत अल्लाह की पहचान पर मेहनत की तो लिहाजा नहीं पहचाना। अगर मेहनत होती तो पहचान, अरे क्या करना होता पहचानने के वास्ते? बोले तुम दुनिया की चीजों के लिए क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ साहब? वो दौड़ धूप करता हूँ, बस खून पसीना एक करता हूँ, दफ्तर को जाता हूँ, वहां जाता हूँ, इनसे मिलता हूँ, उनसे मिलता हूँ, बाजार को जाता हूँ, दुकान को जाता हूँ, जहां वो चीज मुयसर आती है ढूंढता हूँ, तलाश करता हूँ। कैसी जुस्तजू होती है? जैसे दुनिया कमाने की जुस्तजू हमारी घुटियों में पड़ी हुई है, इसी तरीके से अल्लाह को पहचानने और अल्लाह को पाने की जुस्तजू भी हमारे अंदर होना चाहिए, तलब और तड़प हो। और तलब और तड़प के बगैर अल्लाह पाक नहीं देते, ये अलबत्ता खास उसूल है, इसको समझ लेना चाहिए। तलब और तड़प के बगैर अल्लाह ताला नहीं देते, उन्होंने अपना एक दस्तूर बताया है कुरान में। क्या दस्तूर है? इन्नल्लाह यहदी इलैहि मन युनीब, जो अल्लाह की तरफ दिल से दिल के झुकाव के साथ रुजू करता है, लौटता है, पलटता है, अल्लाह ताला उसके लिए राह का हमवार कर देते हैं, रास्ता उसके लिए खुलता है। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राहों में मुजाहिदा करेंगे हम उनके हक में रास्ते खोल देंगे। तो अब मेहनत और मुजाहिदा जरूरी है अल्लाह को, जिनको हम सामने रखकर समझते हैं कि भाई हम अल्लाह को पहचानने वाले हैं। कैसा पहचानते हैं? देखिए, एक बच्चा जो अपने माँ बाप को माँ और बाप कह रहा है, उन कैसा पहचानता अपने अम्मी अब्बा? अगर उस बच्चे से पूछे, जब 10-12 साल का हो गया है, 15 साल का हो गया, आप उसे पूछिए कि मियाँ अम्मी को पहचानता तो पहचानता हूँ, अच्छा अब्बा को भी पहचानता तो जी वो पहचानता हूँ, कैसा पहचानता है? कैसा पहचानता क्या मतलब? वो भी कोई बात है, कैसा पहचान? भाई बोला अम्मी, बहन बोली अम्मी, खाला बोली अम्मी, मामू बोले अम्मी, फूफा बोले अम्मी, लिहाजा मैं भी बोला अम्मी, यही तरीका है ना भाई? सब बोले लिहाजा मैं भी बोला है? भाई वो अल्लाह जिसको हजरत आदम कह रहे हैं वो अल्लाह, हजरत नूह कहते हैं अल्लाह ये, और हजरत मूसा कह रहे हैं अल्लाह, हजरत ईसा कहते हैं वो अल्लाह, हजरत इब्राहिम कह रहे हैं वो अल्लाह, और हजरत जी दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वो परवरदिगार जिन्होंने कायनात को पैदा फरमाया, हजरत मूसा और ईसा कह रहे हैं 1,24,000 कमोबेश अंबिया कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह है अल्लाह है, तो फिर हमको ये कहने में क्या दुश्वारी है कि अल्लाह है? मामूली से भाई बहनों के कहने की बुनियाद पर हमने किसी को माँ किसी को बाप करार दिया और हमने तस्लीम किया और बिला चूमो तेरा मान लिया, जब लाखों इंसान ये कह रहे हैं कि वो अल्लाह इस कायनात का परवरदिगार है, हमारा और तुम्हारा पैदा करने वाला पालनहार है, तो उसको पहचानने में क्या, मान लेने में क्या है? मान लेना चाहिए अल्लाह है। लेकिन अगर वजह समझने में दुश्वारी हो रही है तो बुजुर्गों ने बहुत सी मिसालें दी हैं। एक मिसाल दी कि देखिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, तो अगर कोई ये बच्चा या बड़ा ये कहे कि भाई ये क्या हो रहा है, तो कहते हैं कि भाई हवाई जहाज जा रहा है। अच्छा ये बोलिए कि हवाई जहाज में पायलट है या नहीं है? बोले हवाई जहाज में चलाने वाला मैं तो कैसे चलता हूँ साहब, वो पायलट तो होना चाहिए। बोले नहीं, आपको नजर आया? तो नहीं। मियाँ तुम देखे? तो नहीं। क्या और किसी भाई बहन को नजर आया? तो फिर नहीं। फिर कैसा बोले मियाँ, चाहे उसके अंदर पायलट है? बोल के मतलब इतना बड़ा जहाज है बगैर चलाने वाले के, उन्हें चलता कैसा, वो तो मानना ही पड़ता कि है। जैसे पायलट को देखे बगैर जहाज के चलाने वाले का शूर ताला हो रहा है, तो फिर क्या नहीं, ये बातें तस्लीम करने में कुछ मुश्किल है, ये हवाओं का चलाने वाला, ये चांद जी ये चांदनी को बिखेरने वाला, चांद और सूरज को वजूद बखेरने वाला, जमीन को फैलाने वाला, आसमान को छत बनाने वाला, कहकशान की सड़क उतारने वाला और कायनात के निजाम चलाने वाला कोई होगा या नहीं होगा? उतनी दूर कहीं को जा रहे भाई, आंखों के ऐनक है, हाथ पे घड़ियाल है, बगैर बनाए बनी, बगैर बनाए के बन गई क्या? बोले नहीं बोलता, बगैर बनाए तो सुई भी नहीं बनती, बगैर बनाए के तो टोपी भी नहीं बनती, बगैर बनाए तो पेड़ भी नहीं बनता, फिर बगैर बनाए के सूरज कैसा बन गया, चांद चांद सितारे कैसे बन गए, बगैर बनाए के जमीन आसमान का निजाम कैसे हो गए? लिहाजा वो अल्लाह है, उसी को पहचानना, ये पहचानने का रास्ता है, अल्लाह ताला की मारिफत और अल्लाह ताला को पहचानने का रास्ता। आप जंगल में जा रहे हैं, एक मकान आपने देखा, वहां पर कोई आदमी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई औरत नहीं है, एक ही मकान है, ना आदम है ना आदमदार। लेकिन ये बोलिए कि क्या उस मकान को देखने के बाद आप ये नहीं कहते कि इस मकान को किसी ने बनाया है? ये तो नहीं कहेंगे कि ना शुरू से ऐसी है, बल्कि यह तो कहेंगे कि कोई मकान बनाने वाला है। कौन बनाया है ये बात अलग है, लेकिन कोई ना कोई बनाने वाला तो है, इस बात का तो यकीन है। जैसे मकान का बनाने वाला वाले को हम पहचानते हैं, जैसे हवाई जहाज के चलाने वाले को हम पहचानते हैं, जैसे फिजा के अंदर कोई आदमी कमान के जरिए से तीर छोड़ दिया दीवार के पीछे से, फिजा में उड़ रहा है तीर और जा रहा है ऊपर की सीमत में, आप देख के कहते हैं, मसलन राकेट को देख के कहते हैं कि भाई राकेट किसी ने छोड़ दिया। अगर कोई ये कहे कि भाई क्या आपने देखा जिसने राकेट को छोड़ा, किसने छोड़ा? बोले हम ये तो नहीं जानते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि किसी ने छोड़ा। राकेट के छोड़ने वाले पर हमारा यकीन, तीर के फेंकने वाले पर हमारा यकीन, हवाई जहाज के चलाने वाले पर हमारा यकीन, जंगल के मकान को देखकर तने तन्हा हम इस बात पर यकीन करते हैं कि कोई बनाने वाला है, तो फिर ये जिस्म और जान के ये ढांचे और जमीन और आसमान का इतना बड़ा निजाम बगैर किसी के बनाए कैसे बन सकता है? उस बनाने वाले परवरदिगार के वजूद को तस्लीम करना जरूरी है। इस इकरार के बाद एक इंसान तौहीद के रास्ते पर पढ़ना शुरू होता है, फिर अब उसको समझ में आता है कि जी कि इस कायनात के चलाने वाला एक ही है। जैसे एक बीवी के लिए दो शोहर नहीं होते, जैसे एक बस के लिए दो ड्राइवर नहीं होते, जैसे एक मुल्क के लिए दो सुल्तान और बादशाह नहीं होते, इसी तरीके एक जिस्म में जैसे दो जाने नहीं होती, इसी तरीके से इस पूरी कायनात का चलाने वाला सिर्फ एक है। अब आप सोच रहे होंगे मतलब एक ही कई है, दो क्यों नहीं है, दो क्यों रहना चाहिए? एक थक के सो गया तो दूसरा चलाने वाला होना, भाई सीधी सादी सी बात है, दूसरा क्यों होना? बोले एक थक गया तो दूसरा बैठना, दूसरा चलाना, एक सो गया तो दूसरा चलाना। क्या अल्लाह की जनात में भी यही सिफात लगाते रहेंगे? उन्हें चूंकि थक गया लिहाजा दूसरे की जरूरत है, उन चूंकि ऊंग रहा है लिहाजा दूसरे की जरूरत है, ऐसा तो नहीं। ला ताखुज़ुहु सिनतु वला नौम, न उसको तो ऊंग आती है नींद आती है, थकता भी नहीं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुल अलीयुल अज़ीम, बड़ा बड़ी बरतरी रखने वाला, बड़ा अजमत वाला परवरदिगार है, बहुत ही बेहतर और आला है कि पूरे जमीन और आसमान को संभाले हुए है, लेकिन ये इन चीजों का संभालना उसको थकाता नहीं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, आसमानों और जमीनों के इस निजाम को संभालना खुदा को थकाता नहीं, अल्लाह उससे थकते हैं। जब वो थकते नहीं, जब वो सोते नहीं, जब वो ऊँगते नहीं, बड़ी कुदरत रखने वाले हैं, तो फिर किसी और की जरूरत का मतलब क्या है? हमेशा से जो जात है और हमेशा तक रहने वाली है, बड़ी काबिल कुदरत है, उस जात को हमने अल्लाह माना। तो एक है अल्लाह के होने को तस्लीम करना, एक है अल्लाह के एक होने को तस्लीम करना, और खास बात यह है कि अल्लाह ताला ही को करने वाला भी समझना। करने वाले वही हैं, जो वो करते हैं वो नहीं करते, कुल्लु मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। वही किस तरीके से करते हैं, यानी करता धरता अल्लाह है। हमारे पास खुसूसी जो तालीम और तरबियत में तौहीद फेली का नाम देते हैं इसको, जिसके अंदर ये बात बताई जाती है कि असल करने वाले अल्लाह है। दावत में चलने फिरने वाले बहुत से साथी भी जानते हैं कि ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि असल करता धरता अल्लाह, करने वाले अल्लाह। भाई वही करता धरता क्यों है? आखिर हम कैसा समझे कि वही करने वाले, इसको एक दो मिसालों से समझ लेना बहुत जरूरी है ताकि जल्दी से बात समझ में आ जाए। देखिए एक ट्रेन है, ट्रेन के बहुत से डब्बे हैं, कई हैं डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी। अब अगर कोई साथी आपसे ये कहे कि अच्छा भाई आप ये बताओ कि 10 नंबर की बोगी को कौन सी, 10 नंबर के डब्बे को कौन सा डब्बा खींच रहा है, आप क्या कहेंगे कि 9 नंबर का डब्बा खींच रहा है। अच्छा भाई आप बताओ कि 9 नंबर के डब्बे को कौन खींच रहे, आप कहते हैं 8 नंबर का डब्बा। आपसे पूछे अच्छा भाई 8 को कौन खींच रहे, बोलते 7 नंबर का डब्बा। तो जिससे भी कहो आप ही कहेगा 7, जी 9 को 8 खींच रहा, 8 को 7 खींच रहा, 7 को 6 खींच रहा। लेकिन ईमानदारी की बात पूछिए, सलामत रवि से जरा सोच के बताओ कि असल में खींचने वाला डब्बा है या इंजन है। भाई सारे डब्बों को खींचने वाला इंजन है। आदमी की नजर को धोखा हो गया कि 9 को 8 खींच रहा, 8 को 7 खींच रहा, 7 को 6 खींच, इंजन को अगर हटा लिए तो फिर भी 7 का 8 को खींचता। अब अगर 9 नंबर पलट के पूछा अरे क्या मियां तू खींच रहा था ना बहुत दूर से, फिर लेके चल, मैं क्या करूं तू कैसा कि मैं वैसा, अरे नहीं भाई तू चल रहे तो नहीं तू जैसा कि मैं वैसा, बोले क्यों, बोले इंजन से कनेक्शन टूट गया है। तो असल में हरकत में लाने वाला वो इंजन है। इसी तरह मेरे दोस्तों कायनात के ये दुकान के और मकान के, तिजारतों के और धंधों के और फंदों के, जमीन के और आसमान के और चांद और सूरज और सितारों के, इन डब्बों को अल्लाह की कुदरत का इंजन खींच रहा है, करने वाले अल्लाह ही है। ये बात इतनी ज्यादा समझ में आती रहेगी, ला हाकिमा इल्लल्लाह खुलता रहेगा, ला फाइला इल्लल्लाह खुलता रहेगा। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और अच्छी मिसाल दी है, इरशाद फरमाया कि भाई देखो आपने एक सूरज, आप इस सूरज देख रहे हैं जिसकी रोशनी जमीन के ऊपर पड़ रही है, आप क्या करें धूप की जगह पर एक आईना रख दें, आईना रखिए। आईना रखने के बाद अब ये जो पर्दा है जहां अंधेरा नजर आ रहा है, या ये दीवार है, ये पिलर है, आईने के अंदर से रोशनी निकलती है और दीवार के ऊपर रोशनी पड़ती है, सूरज रोशन, धूप चमक रही है, आईना धूप में रखा हुआ है या आप अपने हाथ में पकड़े हैं, उसमें से रोशनी छलकती है और दीवार के ऊपर पड़ती है जी। अगर अब दीवार से ये पूछे कि ए दीवार तू ईमानदारी से बता कि तुझे रोशनी आईना दे रहा है या कोई और, तो उन जाहिरी नजर में उस दीवार को यही धोखा लगता है कि मेरे को रोशनी दे रहा है आईना। हाँ कह रहे भाई ये दीवार पर रोशनी कौन डाल दे बोलो, तो वो बच्चा डाल रहा आईने से डाल रहा, कौन डालते हैं दीवार पर रोशनी कौन डालते हैं, बोले वो बच्चा डाल रहा आईने से डाल रहा। हालांकि बच्चे के पास ना सूरज है ना चमक है ना रोशनी, सूरज के अंदर ना ये दस्तरस है कि वो जो है खुद रोशन रहे, अलबत्त तो उसके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि उस रोशनी को अपने में लेकर छलका सके, बशर्ते के सैकल हो, सलाहियत और इस्तेजाज हो उस आईने के अंदर। तो बस वो इतना काम करता है कि सूरज की उस रोशनी को अपने अंदर जल्द करके मुनाकिसाना हैसियत से उसकी रोशनी को जो है दीवार के ऊपर फेंक देता है। तो दीवार पर रोशनी का फेंकने वाला आईना नहीं है, असल में सूरज का करिश्मा है। जैसे आईने को हम दरमियान में रखकर ये कह रहे हैं कि ये वास्ता बना है, ऐसे ही मेरे दोस्तों मारिफत की नजर ये है कि हम जैसे आईने को दरमियान में रखे हैं, ऐसे खुद सूरज को भी दरमियान में रख दे। जैसे सूरज और दीवार के दरमियान में आईने ने काम किया, ऐसे ही अल्लाह की कुदरत और इंसानों के दरमियान में रोशनी फेंकने के लिए सूरज ने यह काम किया, सूरज को वास्ता बनाया गया, अल्लाह ताला ने एक करम फरमाया। ये अल्लाह ताला की तरफ एक इंसान की नजर के जिसमें यह बात समझ में आती है कि सारी चीजें अल्लाह ताला की तरफ लौटती हैं, इसी को फरमाया गया कुल्लुन इलैना राजिउन, हमारी तरफ सबके सब लौटने वाले हैं। वइलल्लाहि आकिबतुल उमूर, आप जी अंजाम कर सारे के सारे मामलात की निहायत और इंतहा अल्लाह ही की तरफ पलट के लौट जाती है, अल्लाह की तरफ पलट। अब भाई अल्लाह ताला के ये पहचान और अल्लाह ताला का करता धरता होना समझ में आया और अल्लाह के फायदे हकीकी होने को हमने समझा, तो ये कितना ज्यादा जरूरी इल्म है कि जिसके बगैर हमारा इल्म बहुत ही नाकिस। तो एक बात हुई अल्लाह को मानने की, और दूसरी बात हुई अल्लाह को एक जानने और अकीदे की, और तीसरी बात हुई उस जात के कर्ता धरता होने की। अब उस अल्लाह जो सब कुछ करता धरता है, उस जात को छोड़कर हम किसी दूसरे से वाबस्तगी रखें, नफा और जरर के लिहाज से कैसी बेजा बात हो जाएगी, गलत बात होगी ना भाई। हम ये कह रहे हैं कि सारे मसले अल्लाह के हाथ में और सारे के सारे काम करने वाले अल्लाह पाक हैं, तो फिर ये कैसी बात हुई कि वो अल्लाह जो सब कुछ करता धरता है उसको छोड़कर हम दूसरी तरफ पलटे। एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी मिसाल दी इरशाद फरमाया कि भाई देखो अल्लाह ही की तरफ हमारे सारे मामलात में लौटने की एक सादी सी मिसाल है, आप हजरात ने सुनी भी होगी। दुकानें होती हैं बहुत सी, लेकिन बाद दुकानें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर सारे सामान मिलते हैं, सुई से लेकर जी जनरेटर तक या बड़ी सी बड़ी चीजें जी ताकत और कुवत की और तमाम चीजें वहां मिल जाती, हर छोटी बड़ी चीज उस दुकान के अंदर मुयस्सर आ जाती है जो आमतौर पर इंसानी जरूरतों के लिए होती है। तो आप ये बोलिए कि उन जरूरतों को पूरा करने या उन चीजों के लेने के लिए आप उस दुकान पर जाते हैं जहां सब मिलता है, या आप 10 दुकानें फिरकर आप जो है परेशान होते हैं, यहां एक दुकान में एक चीज ले ली, दूसरी दुकान में दूसरी, तीसरी दुकान में तीसरी। ये तो आप उस सूरत में करते हैं जब एक दुकान में वो दूसरी चीज न मिले, ऐसी सूरत में होता है ना भाई। फला दुकान में चूंकि कोई चीज नहीं है लिहाजा दूसरी दुकान, वहां नहीं मिला लिहाजा तीसरी दुकान, और तीसरी में नहीं मिला लिहाजा चौथी दुकान को तलाश करके चीज ले लेते हैं। और अगर एक ही दुकान में सारी चीजें मुयस्सर आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में ये बताइए कि दूसरी दुकानों को टटोलने ढूंढने की जरूरत क्या है। इस मिसाल को देकर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह के गैबी खजानों में वो कौन सी चीज है जो नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर हम किसी दूसरी तरफ पलट गए। अल्लाह के खजाने में क्या नहीं है? रिज़्क़ उनके पास, औलाद उनके पास, ये इज्जत के खजाने उनके पास, जिल्लत के खजाने उनके पास, रफ़ात के खजाने उनके पास, शान और शौकत के खजाने उनके पास है ना, और अता और मना के खजाने उनके पास, मुस्बत और मनफी खजाने उनके पास, सारे खजाने उस परवरदिगार आलम के पास मौजूद हैं। तो बस उसकी तरफ पलटना है, इसीलिए अल्लाह से अपना राबता उस्तवार रखना और अल्लाह ताला की रजा जोई के लिए जुस्तजू करते रहना चाहिए। इस मौके पर जो अहम बात समझने की वो ये है कि अब वो अल्लाह हमसे कैसे राजी होते हैं, वो अल्लाह हमसे कैसे राजी रहते हैं। अल्लाह की रजा जोई के लिए एक काम करना है, और उस काम को पूरा करने के बाद खुद हमारी जिंदगी भी कामरान हो जाती है और कामयाब हो जाती है। बड़े सादा अंदाज में बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि देखिए भाई, कुछ चीजें हैं पसंद हमको और कुछ चीजें पसंदीदा है अल्लाह को। कुछ चीजें हम पसंद करते हैं और कुछ चीजें अल्लाह ताला पसंद करते हैं। हम लोग क्या पसंद करते हैं? अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, इत्मीनान और सुकून की फिजा है ना भाई। अच्छी चीजें हम तलबगार, अच्छी चीजों के तलबगार। जैसे हम कुछ चाहते हैं ऐसे अल्लाह ताला भी कुछ चाहते हैं। अल्लाह क्या चाहते हैं? अल्लाह ये चाहते हैं कि अल्लाह को भी पसंद है ईमान वाला, कुरान वाला, जी हदीस वाला और शरीयत वाला, तरीकत वाला, मारिफत और अल्लाह की पहचान वाला अल्लाह ताला पसंद करते हैं। जिक्र करने वाला, तिलावत का करने वाला, दुआओं का करने वाला, फिक्र का करने वाला अल्लाह ताला को ये लोग बड़े पसंद। हमको जो चीजें पसंद है वो भी आपने सुन ली, और अल्लाह को जो पसंद है वो भी आप जानते हैं। बंदा अल्लाह ताला को पसंद ये है कि मेरा बंदा इल्म वाला, अमल वाला हो जाए। तो अल्लाह ताला की जो पसंद है वो जिम्मे में है हमारे, और हमको जो चीजें पसंद है वो जिम्मे में है अल्लाह के। ये है असल में दस्तूर। खास बात ये है कि हमको जो चीजें पसंद है वो हमको मिलेंगी, लेकिन अल्लाह को जो पसंद है वो हमको पूरा करना है। गोया अल्लाह पाक ये कहते हैं क्या है, मेरे बंदे तू मेरी चाहत पूरा कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरा कर दूंगा। यह है तरतीब। अब चूंकि हम उनके उनके चाहने की चीजों को हम पूरा नहीं करते, लिहाजा हमारी चाहने की चीजें पूरी नहीं होती, वो तो नहीं हो सकती। और अगर कुछ नजर भी आ गया तो फिर सुकून नहीं होगा, कल्ब की राहत नहीं होगी, इत्मीनान की सांस नहीं होगी, मुख्तलिफ किस्म की परेशान हालियां रहेंगी, परागंदगी रहेगी, ज़हनी तशद्दुद रहेगा, इफ्तिराक रहेगा, एक खास किस्म की बेकलीर बेचैनी रहेगी। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह की ख्वाहिश और अल्लाह ताला की चाहत और पसंद की चीजों को हमने पूरा नहीं। तो अल्लाह जो चाहते हैं उसको हम पूरा कर दें, हम जो चाहते हैं अल्लाह वो पूरा कर दें। यहां भी उसका असर पड़ेगा और आखिरत में तो है ही, बल्कि अल्लाह ने आखिरत में तो वादा ही कर लिया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदअउन, तुम्हारा जो जी चाहेगा, तुम्हारी जो ख्वाहिश होगी वो पूरा कर दिया जाएगा जन्नत के अंदर। जन्नत के अंदर हर ख्वाहिश को पूरा करने का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है। लेकिन जो अल्लाह ताला जन्नत के अंदर एक मुसलमान की ख्वाहिश को पूरा कर देंगे, उस जन्नती इंसान के लिए अल्लाह ताला दुनिया में भी राहत का सामान कर देंगे, यहां भी सुकून देते। और इसकी मिसाल दी अल्लाह वालों ने और ये बात बताई कि देखो अगर हम किसी भी रात की रानी के किसी बाग के पास से या दरख्तों के पास से हम गुजरे जहां से खुशबू महक रही है, या किसी गुलाब के बाग से गुजर रहे हैं, गुलाब के बाग में दाखिल नहीं हुए बल्कि आप आधा किलोमीटर के फासले पर हैं, बाग में दाखिल नहीं हुए, कोई फूल हमने तोड़ा नहीं, दुकानदार से कोई फूल हमने खरीदा नहीं, लेकिन इसके बावजूद और फासला भी अच्छा खासा दूर का है, लेकिन उसके बावजूद उस फूल के बाग की खुशबू आदमी सूंघता हुआ जाता है, इस वास्ते कि वो बाग के करीब है ना, इस्तेफादा करता है ना, खरीदा नहीं, बाग में दाखिल नहीं हुआ, कोई फूल नहीं तोड़ा, लेकिन पांच पास और कुछ फासले से जाने की वजह से उस बाग के फूलों की खुशबू से इस्तेफादा कर रहा। जैसे पास से गुजरने वाला या करीब व दूर से गुजरने वाला जिस तरीके से इस्तेफादा करता है फूलों की महक से, ऐसे ही जन्नत में पहुंचने वाला मुसलमान दुनिया में भी जन्नत की खुशबू को महसूस करता है, अल्लाह ताला उस राहत का कुछ न कुछ उंसुर दुनिया के अंदर भी अता फरमाते। अब जो आदमी जहन्नमी होता है उस आदमी के लिए बलाए और वबाएं भी उसके साथ रहती हैं। देखिए जैसे एक आदमी आग में दाखिल नहीं हुआ, अंगारा अपने हाथ में लेकर नहीं ठहरा और आग के अंदर नहीं कूदा, न वो अपने सर पर लेकर उंडेल लिया, बल्कि पास से गुजर रहा होता है और आग दहक रही होती है तो उसकी गर्मी और लिपट महसूस करता है कि ये आग की लपक आ रही है। जैसे करीब से गुजरने वाला आदमी आग के शोलों की लपक को महसूस करता है और बेचैन होता है, इसी तरीके से जहन्नमी इंसान दुनिया के अंदर उसके असरात बराबर महसूस करता है और वो जो है बेकली और बेचैनी की जिंदगी दुनिया में काटता है। आज पूरी दुनिया का बहुत बड़ा सवाल यह है कि भाई दुनिया अमन के रास्ते पर कैसे चले, भाई जन्नत के अमल शुरू कर दिए तो अमन के रास्ते पर, जहन्नम के अमल करते रहेंगे तो आग के रास्ते पर, और अमन क्यों नहीं है, इस वास्ते नहीं है कि असल में हम जो होना था वो नहीं है, हमारे अंदर जो चीज होना था भाई वो करोड़ों मुसलमान है क्या बात है, फिर भी जो है मगलूबुल हाल है क्या बात, अमन क्यों नहीं, चैन क्यों नहीं, सुकून क्यों नहीं, राहत क्यों नहीं, इत्मीनान की सांस क्यों नहीं ले सकते, और मुसलमान मगलूबुल हाल क्यों है, परेशान क्यों है, बेकल और बेचैन क्यों है, इस बात से कि असल में मुसलमान की जो शान थी वो शान इसके अंदर से निकली जा रही है। और अल्लाह वालों पर अल्लाह ताला रहम करे, ये उन्होंने छोटी छोटी मिसालें देकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी। बहुत सारे साथियों के घरों में दीवान खानों में वो शोकेस वगैरह रखे रहते और वहां पर कोई मेज रखा हुआ हो और मेज के ऊपर एक शेर भी रखा हुआ होता है, बार बार लोग रखते हैं, कोई बिल्ली रख दिया, कोई कुत्ता रख दिया, कोई और चीजें प्लास्टिक की चीजें रख दी, फ्रूट्स और मेवे रख दिए प्लास्टिक के और मिट्टी के बनाकर और हूबहू उसकी शक्ल उतार कर रख दी, ऐसा होता रहे। तो मिसाल के तौर पर एक शेर है मौजूद जी, उसकी उसकी मूछें भी मौजूद हैं, उसके बदन पे के बाल भी मौजूद हैं, उसके उसके जिस्म के पट्टे भी मौजूद हैं, उसको दुम भी मौजूद है, उसके पैर भी है और पूरी शान के साथ खड़ा हुआ है ये और डेस्क के ऊपर ठहरा हुआ, आंखें भी खुली हुई हैं, जुबान भी लाल है और ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे अब चीर फाड़ खाने वाला है, लेकिन उसके पेट में भूसा भरा हुआ है, अंदर क्या है, भूसा। अब अगर आप अपने बेटे को ये बात कहें कि बेटे क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि ये शेर से लड़ सके, तो बच्चा कहेगा कि अब्बा लड़ना बोल रहे हैं उसको तो चिन्या कर देता हूँ। मिया इतनी हिम्मत क्यों हुई? इतनी हिम्मत इस वास्ते हुई कि अंदर घुसा है। अगर सचमुच का शेर रहे तो क्या फिर भी हिम्मत करेगा? बच्चा बच्चा तो बच्चा, अच्छे से अच्छा, ये हालत बिगड़ को हो जाएगी, ठहरने का यारा नहीं रहेगा, फिर टिकना नहीं और दिखना नहीं। अगर असली रूप में आ गया भाई, शेर का हाथ भी तोड़ रहा है, शेर का पाँव भी तोड़ रहा है, शेर की दुम भी काट रहा है, शेर की गर्दन भी काट रहा है, शेर को पीठ में भी उठाया है, लेके भी भाग रहा है। बोले क्यों? इसलिए कि अंदर से शेर नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज मुसलमान की शान, जी मुसलमान क्यों मकलूब हो रहा है? इसलिए कि अंदर से इसकी इस्लामी शान मध्यम पड़ गई है। ऐसा है जैसे भूसा होता, भूसा अंदर से बेईमानी, अंदर से बगावत, अंदर से सरकशी, अंदर से अदावत, अंदर से कीने, अंदर से कपट, अंदर से खुदूरतें, अंदर से मैल कुचेल, अंदर से आवारागर्दी, अंदर से शरारतें। मेरे दोस्त क्या इससे क्या होता है? क्या हम लोग दुनिया पर आने वाले हैं? वादाए गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब नहीं कुछ है का सर ईमान में। वादाए गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब नहीं कुछ है का सर ईमान में। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, अंतुमुल आलम इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर्वलंग रहोगे अगर तुम साहिब ईमान। ईमान की जान अंदर और शान रखे कोई आदमी, फिर उसके बाद गालिब न रहे कोई माना नहीं। अल्लाह ताला जी उन मुसलमानों को बराबर गलबा अता फरमाएंगे, और आज के मुसलमान को अल्लाह जरूर इज्जत दे सकते हैं, देते हैं। अल्लाह ताला का ये दस्तूर है कि जो साहिब ईमान होता है अल्लाह ताला उसको रफ़त और बुलंदी अता फरमाते हैं, बशर्ते कि ईमान मौजूद हो या ईमान के रास्ते पर पड़ जाए। कोई सांप मौजूद है जी, मगर मरा हुआ है, मरा हुआ सांप बहुत बड़ा है, 10 बालिश का है, ये पट्टेदार है, फन भी मौजूद है, और यह बस देखने में भी डरावनी है। वाह, बच्चे से पूछे कि बेटे देखो क्या तुम ऐसा करो, ये मरा ये सांप को क्या तुम उठा के दूर घोड़ पर फेंक सकते हो? बोले हाँ जरूर फेंक देंगे। आप कभी छड़ी लेकर उसकी दुम को हिलाएगा, कभी उसकी मुंडी पलटाएगा, कभी उसको यहां से वहां तक घसीट के लेकर जाएगा, कभी इधर खींचा कभी उधर खींचा, बच्चों के लिए एक तमाशा। बोले क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? बोले तो सांप के अंदर से जान निकल गई, इसलिए बच्चों का खिलौना हो गया। और अगर सचमुच का जानदार नाग सांप सामने आ गया तो क्या उसके बाद भी कोई बच्चा है जो ये कहे कि खिलौने की तरह खेलूंगा? उन पहले भागता, भाग के बोलता मल साहब नाग आया हूं। फिर मल साहब कहीं जाना, ऐसा मल साहब भी उधर नहीं भागते, लाठी की तरफ भागते। भले क्यों? इसलिए कि उसमें जान है रे, जान है, चूंकि सांप में जान है, लिहाजा बच्चा भी दूर हटता है और सांप भी दूर हट जाता है। अगर हमारे अंदर सचमुच जान मौजूद हो, फिर कोई माना ही नहीं है कि जी हमारा खौफ या हमारा जी हमारा रोग और दबदबा या हमारी शान और शौकत या हमारी हशमत लोगों के ऊपर तारी न हो, कोई माना नहीं। अल्लाह पर का वायदा है वानतुमुल्लाहुनगा। मगर अफसोस ये है कि आज हमारी मिसाल ऐसी हो गई जैसे कोई अत्तार इत्र की शीशी बेच रहा हो, मगर ऊपर लेबल लगा हुआ है ये जन्नतुल फिरदौस है और अंदर जो है गोबर है। शीशी है बेहतरीन, कंगूरेदार है, कार्क है, शानदार है, 3 इंच की है, 5 इंच की है, बड़ा जी और शानदार है, इत्रदान की शक्ल में है और अजीब और गरीब है, खूब से खूबसूरत है, खूब करीब है, अच्छी से अच्छी। लेकिन जब इत्र वाले साहब कोई हो तो खफा न हो, जब इत्र का कार हटाया गया अंदर झांके तो उसमें गोबर की बदबू आने लगी। तो बोलिए कि अगर वाकई ऐसा हुआ, ऊपर लेबुल है जन्नतुल फिरदौस, अंदर है गोबर, कार के निकाल के देखा, उसके बाद फिर उस अत्तार को बुलाते घर के पास, बोले अगर फिर नजर आया तो तेरी शामत ने। बोले क्यों? इसलिए कि लेबुल एक है, अंदर कुछ है। ऐसे ही अगर आज का मुसलमान अगर जाहिर के एतबार से अपना जी नाम रखता हो, लेकिन अगर अंदर से वो बेईमानी के जज्बात रखता हो, तो अल्लाह के पास इसकी कोई वकात नहीं है। जैसे हम उस गोबर की शीशी को उठाकर फेंक देते हैं, ایسے اللہ پاک بھی آج کے انسانوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے شیشیوں کی جن کے اندر گوبر بھرا ہوا ہے. تو ہم شاندار بن جانا ہے, اور یہ شاندار بننے کے لیے جاندار بننا ہے. جاندار بننے کے لیے قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی ہے. کیا ہے قرآن مجید کی آیت؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ انہوں نے ظلم کی آمیزش نہیں کی اور زیادتی نہیں کی, تو ان لوگوں کے لیے امن ہے. امن کن کے لیے؟ یہ قرآن کا اصول ہے, قرآن کی آیت ہے, قرآن کا اصول ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی. ظلم کی آمیزش نہیں کی کہ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے جی شرک کو جگہ نہیں دی,